भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः प्रश्न थे राजा विदेहिनो कि भागवतोत्तम कौन है केवो भगवान स्वयं उद्धव जी ने पोताना जीवन नो अनुभव आदेश अने उपदेश में आपी रहा छे। कल हमने देखा कि भगवान की पूजा कहाँ और कैसे हो सकती है। जब भगवान स्वयं अपने में ही आत्मस्वरूप है और आत्मा स्वयं ही भगवान का अंश है, आत्मा स्वयं भगवान का अंश है और उसी में ही अपने आत्मा में ही भगवत दर्शन या भगवान का आदेश हुआ है। और जब भी हम हमारे में ही अशांत होते हैं, जब हम स्वयं ही अपने आत्मा को व्यथित करते हैं, तब भगवान की पूजा में यही सबसे बड़ा व्यवधान है। आत्मदर्शन करते करते स्वयं ये भाव तक पहुंच जाए कि जहां पर प्रभु का आवास है, यहां पर इस जीवन का ठीक ठीक संचालन करने के लिए भी यहाँ भगवान बताते हैं। भगवान दत्तात्रेय भी कह रहे हैं यदु को कि यदु, तू सम्राट होते हुए भी जो हमारे पास जो है वो तेरे पास नहीं है। संपत्ति सत्ता सब कुछ वैभव हो सकता है, परंतु हमें जो उपलब्धि हुई है वो तेरे पास कभी भी नहीं आ सकती जीवन में। तो इसलिए भगवान यदु को कह रहे हैं कि यदु, जीवन को यदि ठीक ठीक उसका संचालन करना है, संभालना है, तो उसके लिए संतों का संग किया जाए। जैसे सनकादिक ऋषि भी हंसा अवतार में प्रभु के पास पहुंचे, सनकादिक ऋषि भी संत है, तो यहां अब शरीर का संचालन, जीवन का संचालन हम कैसे कर रहे हैं, हमारा व्यवहार, हमारे जो जीवन का भोग परायण एक भाव है, एक भाग है, उसमें हमारा जीवन हम संचालन कैसे कर रहे हैं। देखो, दृष्टि हमारे में जानी चाहिए पहले, अपने में स्वभाव को पहचानो कि हमारा भाव कितना हो सकता है, हमारी कीमत कितनी हो सकती है। चीज की जैसे कीमत करते हैं, भाव करते हैं, वैसे अपना भाव करो पहले, स्वयं अपनी कीमत निकालो कि मेरी कीमत क्या हो सकती है। जब अपने आप को पूरा पूरा पता चल सकता है, इतना दूसरे किसी को पता नहीं चल सकता है कि मेरा भाव कितना हो सकता है। दुनिया जब भी हमारी कीमत करेगी तब झूठ ही करेगी, बड़े महापुरुष बड़ा सज्जन है, गृहस्थी है लेकिन बहुत बहुत स्वभाव अच्छा है, संत जैसा स्वभाव है, दुनिया तो बड़ी प्रशंसा करेगी। और प्रशंसा के ताव में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अहंकार में पड़ जाते आ जाते हैं। प्रशंसा की मीठी गोली ऐसी है डायबिटीज जल्दी कर देती है, अहंकार का डायबिटीज आ जाता है। जिसकी भी प्रशंसा हुई समझ लो उसको डायबिटीज आ गया अहंकार का, नहीं देर लगेगी। और किसी भी औषधि से नहीं जाएगी वो डायबिटीज भी, जो प्रशंसा की के द्वारा जो भी डायबिटीज लग गया हमको वो जल्दी नहीं हट सकता। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि यदु, उसके लिए तो किसी संत के पास जाना पड़ेगा। अपना जीवन संचालन करने के लिए नाटक नहीं करना है, दिखावा और है, अंदर का जीवन और दूसरा है। एक मुंह से दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी जगह दूसरे मुंह पे से दूसरी बात कर रहे हैं, ये जीवन नहीं है। चाहे नाटक करते रहो, और वो भी समझ लो कि ऐसा नाटक मनुष्य के जीवन का ये दुनिया के आंगन में हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। वो भी एक दिन पता चल जाएगा कि ये नाटक है, वास्तविकता कुछ और है। जीवन का सही उपयोग, जीवन का सही लक्ष्य हमारा क्या है? सबसे पहले तो हम सत्संग के द्वारा, जैसे भगवान दत्तात्रेय ने बताया यदु को कि संतों का संग करें। अब सत्संग के द्वारा जीवन को ठीक बनाना है, कैसे संचालन करें हमारे जीवन को। वैभव है तो भोग आ जाएंगे, सत्ता है तो अहंकार आ जाएगा, और वो सब कुछ निकालना है जो दूषण है हमारे जीवन में। उस दूषण से हटना हो, उससे अटकना हो, तो हम सबसे पहले हमारे में जो भरा पड़ा हुआ है उसको निकालें। हमारा भाव, हमारी कीमत हमारे में पड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि मेरी कीमत क्या हो सकती है। आप लोग अपनी स्वयं की कीमत जान सकते हैं, दूसरा नहीं। जो जिसका मालिक होगा वही उसकी सही कीमत बताएगा। या तो किसी को छलना है, या किसी से झूठ से कह सकते हैं कि मैं जो बेचने के लिए आया हूँ इसकी कीमत इतनी बढ़ा चढ़ा करके बोल देगा, लेकिन उसको पता चल जाएगा दूसरी जगह से कि ये कीमत उसकी वास्तविक नहीं। ऐसे हम भी हमारी अपनी कीमत, अपना स्वभाव दूसरे के पास यदि गलत कह देंगे, लेकिन दूसरी जगह से हमको उसका भाव मिल जाएगा कि उसकी कीमत इतनी है। नियंत्रण, जीवन का नियंत्रण, संचालन अपने जीवन का, दूसरे का नहीं। हम प्रायः करके दूसरों के जीवन में दृष्टि डालने की आदत हमारी पड़ गई है। दूसरे का क्या देखते हो, अपने स्वयं का पहले देखो कि मेरे में क्या है, मैं क्या हूं। जो गलत संस्कार है, यदि जब अपनी दृष्टि से अपने गलत संस्कार जब तक नहीं दिखता है, तब तक वो हुई आंखें पर भी वो अंधा है। आंख होते हुए भी उसके पास अपने लिए दृष्टि नहीं है। दुनिया के गुण दोष देखने की दृष्टि है, मगर अपने गुण दोष के लिए उसके पास दृष्टि नहीं है। और अपने दोष को कभी दोष समझता ही नहीं है, एक अहंकार है। और इसी के कारण वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है, अपने आप को बहुत बड़ा मान बैठता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। हाँ, कभी कहना कब पड़ता है कि हाँ भाई आप तो बहुत बड़े 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 महाबदमाश हो, ऐसा कह देंगे तो। क्यों? कि उसके पास मात्र अहंकार पड़ा हुआ है, और अहंकार से कभी भी वो अपने स्वस्वरूप के तक कभी पहुंच नहीं सकता है कि मेरा स्वरूप, मेरा आत्मा, मैं स्वयं ये हूँ। अहंकार शरीर का रहता है और शरीर के मान अपमान से ही वहां पर द्वंद्वात्मक जीवन और जगत खड़ा हो जाता है। कई शत्रु मित्र, मान अपमान, सब कुछ। जो जिसको छोड़ना है वो नहीं छूटता है और जिसको हमको ग्रहण करना है वो छोड़ते हुए हम जीवन में आगे निकल जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं अंधे की तरह। अब खोजने के लिए कहीं दूर तो जाना नहीं है, कहीं एक तसु भी दूर नहीं जाना है। जो खोजना है, आत्म प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति करना है, आत्मा और परमात्मा। पुष्पदंत भी कह देते हैं नमो निरिष्टाय। उपासना शिव की कर रहे हैं और सबसे पहले अपने जो नजदीक से नजदीक जो है उस प्रभु को मेरा प्रणाम। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और कल्याण में भी हमारा आत्मा सबसे नजदीक है। जो जीव स्वरूप है उसी को शिव बनाना है। शिव से ही आत्म प्राप्ति होगी, कल्याण। अब निधिष्ठाय, नजदीक से नजदीक जो है उसको प्रणाम कर लेते अपने आत्मा। तो भगवान ने जैसे यदु को बताया, भगवान ने जैसे उद्धव को बताया, श्री कृष्ण ने आत्म पूजा होनी चाहिए। आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, सर्वस्वरूप है, वही अमर है, अजन्मा है, जैसे भगवान। जिसको अमृत कहते हैं वही आत्मा है। अमृत प्राप्त करने के लिए कहीं स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। हाँ, स्वर्ग वही हो सकता है हमारे जीवन में अच्छे विचार, अच्छा जीवन, और इसके द्वारा हमारा जीवन का संचालन भी अच्छे से अच्छा करो, यही अमृत है। जब तक शरीरवादी बने हैं तब तक भोगवादी हम बने रहेंगे, और जब भोगी रहेंगे तब तक हमारे जीवन के, हमारे शरीर की ही उपासना होगी और शरीर का ही उपयोग होता रहेगा। और शरीर तो पहले से बताया है, जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। शरीर जन्मता है, मरता है, मरता है, जन्मता है, यह तो साहजिक है कि शरीर का आना जाना, विकृति उसमें पड़ी हुई है। तो जब तक शरीर को ही प्राधान्य दे करके हम जी रहे हैं तब तक उसकी विकृतियां, उसके अंदर रहा जो रोग, वो सब कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। भौतिक संबंध शरीर का है तब तक भौतिक सुख भी भोगने पड़ेगा। शरीर से मन हटा लो, है होते हुए भी नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ मनन चिंतन हमारे में रहना चाहिए कि शरीर होते हुए भी नहीं है, अगले श्वास में क्या होगा हमारा वो पता नहीं है। कल की करे बात, पल की खबर नहीं, क्या होगा। तो जीवन का संचालन ठीक ठीक करने के लिए यह प्रभु भगवान कृष्ण आदेश दे रहे हैं उद्धव जी को कि जीवन का संचालन सबसे अच्छा करना हो तो सत्संग से ही हो सकता है। जिसके पास सत्संग नहीं है वो टिक ही नहीं सकता। अपने मनोवृत्तियों में, भोगों में और जो पड़े हुए पदार्थ में कब उसमें भटक जाएगा और कब फिसल जाएगा, कब गिर जाएगा पता नहीं। हमारे जीवन का आधार यही है भगवान, यही भगवत उपासना। और जीवन के दोनों छोर के तरफ दृष्टि डालो। वृद्धावस्था में भी छड़ी लेना पड़ता है, हाथ में लकड़ी लेनी पड़ती है। जब बचपन में चलना नहीं आता था उस समय भी आधार तो लेना पड़ता था कुछ ना कुछ, गाड़ी का। तो जो दोनों छोर जो हमारे जीवन के आधार के बिना वो टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। वैसे दो छोर के बीच का जो हमारा जीवन है वो भी इसी प्रकार है। यदि धर्म का, यदि सत्संग का आधार हमारे जीवन में नहीं है, भगवत आधार जो नहीं होगा, वो कब कहाँ पर गिर जाएगा, किस भोग में, किस अहंकार में, किस लोभ में, वासनाओं में अपने जीवन को वो गिरा देगा, बिना आधार जो चलेगा। तो सत्संग ये तो जीवन को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, गिर न जाए इसलिए एक आधार है हमारा सत्संग। सत्संग एक साधन है। जिसके पास सत्संग नहीं है, संत संग नहीं है, बिनु सत्संग न हरि कृपा देह बिनु मोह न जाए, मोह गए बिनु राम पद होई नहीं दृढ़ अनुराग। जब तक अध्यास शरीर का, मोह भोगों का, वासनाओं का पड़ा हुआ है, तब तक आप राम तक, क्या आत्माराम तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा साधन है जीवन का अच्छे से अच्छा संचालन करने के लिए। जिसके पास संत संग है, सत्संग है, चाहे संत न मिले कहीं पर, तो अच्छे ग्रंथ का, अच्छे विचार संग करो, प्रभु की पूजा का संग करो, प्रभु के नाम जप का संग करो, नाम संकीर्तन का संग करो, वो सत्संग हो। सत्संग हमेशा, संत संग हमेशा न मिले तो सत्संग कर ले, और जो प्रत्यक्ष में संत मिल जाए तो उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं, क्योंकि उसके पास अपने जीवन का अनुभव है, अनुभूतियां है। भगवान दत्तात्रेय राजा यदु को अपने जीवन का जो आत्मदर्शन है, आत्मानुभूति है, जीवन मुक्ति का साक्षात्कार तो कराया है यदु को सम्राट होते हुए भी। जो जिसके पास जो होगा वही वो दे सकता है। सज्जन के पास सज्जनता होगी तो सज्जनता ही, और जो दुर्जन के पास दुर्जनता पड़ी हुई है तो दुर्जनता ही दे। संत स्नान कर रहे हैं नदी में, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है, दया आ गई, हाथ में पकड़ के बाहर निकालने जाते हैं, काटता है, फिर काटता है, वो निकालने की चेष्टा करते हो, पांच बार ऐसा किया, दूसरे किनारे पर खड़े उनका बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये आपको बार बार काट रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने दो। कहते बाबा तो उसका धर्म, उसका स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं। स्वभाव दुर्जन के पास दुर्जनता ही मिलेगी, बिच्छू के पास डंक ही मिलेगा। यदि संत अपना वर्तन जो बदल देगा, तब समझ लेना है कि उसमें संतपन का कुछ अभाव होते जा रहा है। जिसके पास जो होगा, सज्जन सज्जनता ही दे सकता है, अपना अनुभव दे सकते हैं यहाँ पर दत्तात्रेय जी। ऐसे भगवान जब अपने स्वधाम के जाने के लिए तैयार हुए हैं, उस समय उद्धव को भी अपने जीवन का सार अनुभूति दे रहे हैं कि उद्धव मैं तो अब जा रहा हूँ, अब स्वधाम गमन का मेरा समय हो चुका है, अब जब तुम यहाँ पर रहने वाले हो तो क्या करना है, तो बताया कि सत्संग करो। उद्धव जी को बद्रीनाथ में भेज दिए हैं, बद्रीनाथ में चले गए, और वहाँ पर भी सनकादिक ऋषि मिलेंगे, उनके साथ आप सत्संग करना, अकेले मत रहे, कभी अकेले मत रहे, चार संत मिलके रहे, चार सत्संगी मिलके रहे, और कभी अकेले हैं तो मन को भी अकेला मत छोड़ो, उसको संत संग में या सत्संग में कोई सज्जन से मिलने का प्रयत्न करो, अच्छे विचार से अपने मन को मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, भजन से मिलाओ, नाम जप से मिलाओ, लेकिन कहीं पर भी ऐसे लगा दो कि मन अकेला ना पड़ जाए। जब भी अकेला पड़ता है मन, तब पाप करना शुरू कर देता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी है पानी की तरह, कौवे की तरह। बायस पलि है अति अनुराग, बड़े अच्छे भाव से कौवे को आप पालो पोसो, सोने के पिंजरे में रखो, अच्छे से अच्छी चीज खिलाओ, फिर पिंजरा खोल के उसको छोड़ दो, देख तो लो क्या कर रहा है। हीन से हीन जगह पर जाकर के बैठेगा। वैसे अपना मन भी यदि उसको थोड़ा भी छोड़ दिया, इसलिए देखो संत है भजन करते रहते हैं, भगवत स्मरण करते रहते हैं, कोई ग्रंथ का चिंतन करते रहते, क्यों? कि मन को खुला नहीं छोड़ना है, उसको सत्संग के पिंजरे में बंद ही रखो, और जो कुछ देना है अंदर ही देना शुरू कर दो। यदि उसको कुछ लेने खाने की स्वतंत्रता दे दी तो गलती के तरफ ही जाएगा, पाप और दुराचार के तरफ ही जाएगा, कौवे की तरह। तो सत्संग के पिंजरे में जब अपना मन जब तक बंद है तब तक वो ठीक रहेगा, और उस प्रकार उसको अच्छी तरह से अभ्यास हो जाने के बाद अवधूत दत्तात्रेय की तरह मुक्त मन से फिर घूम सकते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद भी ले सकते हैं, जब हमारे मन के ऊपर पूरा पूरा संयम और नियंत्रण आ जाए। उद्धव जी का प्रश्न है कि प्रभु जीवन को, जीवन का संचालन ठीक कैसे हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर, और आगे भी इससे बड़ा बड़ा भारी एक प्रश्न कर रहे हैं, और वो सबके लिए है वो प्रश्न, मात्र उद्धव जी के लिए क्या, यदु के लिए ही नहीं, सबके लिए। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, और उद्धव भी प्रश्न कर रहे हैं, यदुराजा भी प्रश्न कर रहे हैं कि निवृत्ति परायण जीवन कैसे जिया जाए। निवृत्त हो गए हैं, काम कुछ नहीं, न कमाना है न कुछ काम करना है, अवस्था भी आ गई है कि शरीर काम भी नहीं दे सकता, कान काम नहीं कर रहे, आंख भी काम कर नहीं कर रही है, दांत भी गए हैं, पेट भी इतना काम नहीं कर सकता, पैर चल नहीं सकते, यही तो निवृत्ति हो गई शरीर की भी। कुछ दफ्तर से कुछ कार्यालय से तो 60 वर्ष के बाद निवृत्ति मिल जाती है, लेकिन शरीर से भी धीरे धीरे निवृत्ति मिलने लग जाती है, जब जो जो कुछ देखा अच्छे भाव से बुरे भाव से उसको वो भी छूट गया, अच्छे बुरे भाव से जो कुछ कहा कुछ सुना उसमें भी निवृत्ति आती जाएगी, कान बंद होते जाएंगे। तो ये है जो निवृत्ति का समय, निवृत्ति परायण जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान कहते बालकवत बाल चेष्टा को करें, जैसे बालक सोया हुआ पड़ा है बच्चा, उसको कोई उठाएगा तो उठेगा, कुछ पहनाएगा तो पहनेगा, उसको जो कुछ देंगे वही वो करेगा, बाकी वैसे पढ़ा देगा। ऐसे इस उत्तर जीवन की उत्तरावस्था में भी सहज भाव से जो कुछ प्राप्त हो गया उससे अपना जीवन निर्वाह करके संतोष मान लेना, कभी भी मन के अंदर ऐसा उद्वेग ना हो कि मुझे ये न मिला, मुझे वो न पाया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा करके कभी भी मन को अशांत मत कर। जो कुछ प्राप्त हो गया, यदि दांत नहीं है चबाया नहीं जाता है तो रोटी को दाल में भिगो करके भी खा लो, लेकिन छोड़ो संकल्प विकल्प, और जब भी हम आशा करेंगे तब तक हम जा करके दुखी होंगे, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरी कोई दरकार नहीं रही, मेरी संभाल नहीं रही, मैं इतना बूढ़ा हूँ, जबाया नहीं जाता है, फिर भी उनको पता नहीं है कि ऐसा नहीं देना और ऐसा देना। अपने आप को पहले संभाल लो, जो भी सुविधा जैसे भी हुई है उसको अपने अनुकूल बना करके उसका उपयोग करके संतोष प्राप्त कर लेना, यही तो जीवन मुक्ति है। जब भी आप अपनी मनमानी करने चाहोगे तब तक आपको जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। उत्तम सहजावस्था, उत्तम अवस्था वही है जीवन की जो साहजिक हो सके। जब भी आप मन के साथ रह करके जीवन का व्यवहार करते हो तब तक जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। हाँ वो मिलेगा सही, लेकिन मृत्यु के बाद मुक्ति का आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन जीते जी हमको तो चाहिए। ये उद्वेग, ये अशांति, ये दुख, ये जो कोई मान अपमान की हमारे दिमाग में भरी हुई बात है उसको हटाना। बालकवत जीना, ऐसे भगवान ने कह दिए। 130 साल की उम्र में भगवान जब स्वधाम गमन की इच्छा करते हैं उस समय ये बात कह रहे हैं कि जब भी अपना जीवन शरीर असक्त हो जाए, जीवन में शरीर भी साथ न दे, जीवन है, आयुष्य है, मगर अपना शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है, क्या करोगे? कोई रोग में आ पटके शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, क्या करोगे? तो उस समय जो सहयोग नहीं दे रहा है उस शरीर के साथ एक समाधान कर लो। अच्छा, तुझे ही भोग चाहिए थे, तू भी भोग लेता था, अब उसी भोगों से तू रोगी हुआ है, तो बस अब तेरी सजा, तेरी शिक्षा तेरे को मिल रही है। कभी हाय हाय मत करो, हरी हरी करो। जो कुछ अपने हाथ से किया हुआ है वही अपने को प्राप्त हो रहा है। संयम रखा होता तो शरीर दुर्बल नहीं बनता और ऐसे रोग नहीं आते। भोगे रोग भयम, ऐसे भर्तृहरि कह देते कि भोग से रोग आने वाला ही है, भोगी रोगी ही होगा। आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते, ऐसे भगवान गीता में भी कह रहे हैं। आत्म संयम ही हमको योग कराता है प्रभु से, आत्मा से। और जब भी अपने आत्मा का योग हो गया, मिलन हो गया, तब संयम सहज आ जाएगा। वो फिर आत्मा से व्यवहार करेगा, आत्मा से बात करेगा, अपने स्वस्वरूप से बात करेगा, वो शरीर के भोग से कभी भी नहीं जुड़ेगा, उससे हटने का ही, दूर रहने का प्रयत्न और प्रयास करेगा। क्या है इस भोगों में? यही संस्पर्शया भोगा दुखयो नय एवते। अर्जुन, ये जो संस्पर्श जन्य जो भी सुख तूने माना है वो दुख का जन्म देने वाला एक स्थान है, कारण है। यही संस्पर्शया भोगा दुखयो नय, संस्पर्श जन्य जो भी भोग है वो भोगों में से आप भोगो, मगर उसमें से उपलब्धि क्या होगी, उसमें से क्या पैदा होगा, क्या जन्म लेगा, ये दुख, दुख ही हो रहा है। दुख के द्वार है काम क्रोधस तथा लोभ, नरकस्येदं द्वारं त्रिविधं, ये तीनों नरक के द्वार है। जीवन कौन सा नरक, यही अपने जीवन को ही नरक बना देते हैं। दुख और अशांति रोग, तो जब हमारा शरीर ही हमको आयुष्य भोगने में साथ नहीं दे रहा है, जीवन जीने में हमको सहयोग नहीं दे रहा है, दुखी है, उस समय शरीर के साथ भी समाधान कर लो। जितना भोगा है इतना रोना है, इतने रोग आएंगे। जब इस अवस्था में हम हमारे को समझ पाएंगे, जब हम जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके द्वारा ही हमारा निर्वाह कर लेना है व्यवहार का, उसी का नाम है हमारी उत्तर अवस्था का संतोष। बस उसी को ही हमारी विदेही जीवन मुक्ति समझ लो। जब भी मन बंधन में आता है तब जीवन भी बंध जाता है, जीवन मुक्ति का आपको स्वप्न भी नहीं आएगा, स्वप्न भी नहीं मिल सकता है जीवन मुक्ति का। क्यों? कि आप स्वयं मन के व्यवहार के साथ बंधे हुए हैं। जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो मन के साथ का व्यवहार रोको, मन शरीर के साथ जाएगा और जो अध्यात्म चिंतन है वो आत्मा के साथ जाएगा। मन शरीर के साथ रहता है तो दुख और रोग ही भोगेगा, और शरीर में रोग मन में दुख होते हुए भी हम आत्मा के पास चले जाएंगे तो रोग और दुख होते हुए भी हम स्वस्थ रहेंगे। क्यों? कि हमारे पास वो सत्संग का विचार भरा पड़ा हुआ है कि शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर में रहने वाला मैं अलग हूँ, मेरा स्वरूप दूसरा है। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य और यही सत्संग से प्राप्त हुआ हमारे जीवन का अच्छे से अच्छा व्यवहार, हमारे जीवन का सही संचालन। सबसे पहले हमने शरीर का ही संचालन अच्छा नहीं किया है, कहीं न कभी हमने उसके साथ कुछ न कुछ तूफान किया हुआ है। हमारे शरीर के संचालन, आयुष्य जीवन का संचालन हमने कुछ गलतियां कर दी। शरीर के साथ शरीर का संचालन करने के लिए हमने कोई न कोई शरारत भी कर दी है और शरारत का परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। भोगो, जो करेगा वो भरेगा। कबीर जी भी वही कह रहे, तू क्यों भरे उदास, जो करेगा सो भरेगा। अब जब एक संत महापुरुष अपनी वाणी का सत्संग हमको दे रहे हैं, हम भी हमारे जीवन में यदि जीवन के शरीर के साथ का व्यवहार मनमाना करेंगे ना, तब भी हमारी वही गति दुर्गति होगी। सही मार्ग पर जीवन का अच्छे से अच्छा संचालन संयम के द्वारा, सदाचार के द्वारा। देखो महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, महाभारत में बहुत कुछ विद्याएं और समाज दर्शन है, और उसी के बीच में एक अनुशासन पर्व है। महाभारत में अनुशासन पर्व है, और वो अनुशासन कैसे प्रकृति पर, जड़ चेतन पर, अपने जीवन पर कैसे हो सकता है, उसका बहुत अच्छा सुंदर मार्गदर्शन को मिला है। जीवन भी महाभारत है, संघर्ष है, उसमें भी अनुशासन की आवश्यकता है। महाभारत का संग्राम जहां जहां पर अनुशासन से दूर गया, अनुशासन से विहीन हुआ, तब वहां पर अधर्म का उपयोग हुआ है, अधर्म का व्यवहार वहां पर आरंभ हो गया। तो हमारे जीवन में भी हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर अनुशासन नहीं होगा, वहां पर अधर्म ही आकर के खड़ा हो जाएगा हमारे जीवन के आंगन में। जब भी शिष्य के ऊपर गुरु का अनुशासन है, पिता अपने संतान पर, अपने परिवार पर, जब भी घर के कोई बड़े आदमी का नियंत्रण होता है, तब तक तो सब नियंत्रण में अच्छी तरह से संयम से चल रहे, लेकिन देखा घर में बच्चों ने कि आज नहीं है बड़े, तो मनमाना खेल करेंगे और तोड़फोड़ भी कर देंगे। अनुशासन में बहुत अच्छे रहते, सयाने बन जाते। तो ये मात्र बच्चों के जीवन की बात नहीं है, हमारे सबके जीवन की बात है। अनुशासन के बिना का जीवन देखो, दृष्टि डालो अपने भूतकाल में, बिना अनुशासन का जीवन हमारा कैसा रहा, और जब भी अनुशासन मिला तब उस जीवन में हमें क्या उपलब्धि हुई, क्या प्राप्त हुई हुआ, हमें क्या मिला, ये भी हमको हम पूरा अपने स्वभाव को खोजेंगे और उसके द्वारा ही हमारा भाव, हमारी कीमत हम करेंगे। दूसरे से कभी नहीं करवाना कीमत, सच्ची कीमत दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा अंतःकरण, हमारा मन जानता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कितने में। दूसरा तो देखेगा तो तू बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन बाद में पता चलेगा। जीवन में अपना व्यवहार खुले पुस्तक की तरह रखो, उसका एक एक पृष्ठ हर कोई देख सकता है। उसके जिल्द के बीच में, ऊपर नीचे के जिल्द के बीच में क्या है, वो हर एक व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। वैसे जीवन बालकवत शुद्ध कि घर में, घर के आंगन में किसी ने पूछा कि अरे तुम्हारे पिताजी घर में है कि बाबा कह तो दिया है कि कोई आए तो बता देना कि पापा जी घर में, पिताजी घर में नहीं है, बताओ ये क्या हुआ। बालक पता जीवन सच्चा बोलना, हमारे पिताजी ने कह दिया है, कोई आए पूछे तो बोल देना पिताजी घर में नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो जो बालक है वो अपने जीवन का व्यवहार जो देखा हुआ है, जो सामने प्रत्यक्ष है, वैसा ही करता है। और हम मनमाना कर रहे हैं और उसमें भी अनुशासन विहीन झूठ भी बोल देते हैं। और जैसा अनुशासन के बिना का हमारा जीवन का व्यवहार हुआ, वैसा परिणाम भी हमें अनुशासन विहीन ही प्राप्त होगा। और जब उसको भोगना होता है तब हम दुखी होते हैं, रोते हैं। भगवान यदु को भी यही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण उद्धव को भी यही बता रहे हैं कि उद्धव जीवन किसी संत के साथ सत्संग में ही जीना, जिससे अपनी उत्तरावस्था में कभी अशांत ना हो, अपने जीवन की कभी दुर्गति ना हो। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावि। जो अंतकाल में जैसी मनोवृत्ति रहेगी, जैसा जीवन का मन का व्यवहार और उसकी प्रवृत्ति रहेगी, वैसे ही अंतकाल में शरीर छूटने के बाद नए शरीर के आरंभ में वही संस्कार और वही शरीर प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है और सत्संग के द्वारा अपने जीवन के उत्तर अवस्था को संभाल लें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सुंदराम महाराज की जय। दुर्लभ मानु दुर्लभते नाहि वैकुंठ प्रियदर्शन। भगवान अपने निज अनुभव की बातें भक्तों के माध्यम से, उद्धव जी के माध्यम से हमारे जीवन कल्याण के लिए बता रहे हैं। जीवन का व्यतिक्रम, जीवन की सुव्यवस्था कैसे हो सकती है वो हमने कल देखा। जीवन संभालने का क्रम कैसा होना चाहिए और उस जीवन को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने अपने श्रीमुख से बहुत ही अच्छी तरह से हमको बताया। संत संग करो या सत्संग करो, दोनों में से कोई भी जो प्राप्त हो जाए उसका आधार लेकर के अपने जीवन का संचालन अच्छी तरह से करें। हम एक घर का संचालन अच्छा नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय का संचालन अच्छा नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का संचालन हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। जो संचालन के लिए, जैसे किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपने को बहुत ही निपुण समझ लेता है, सफल मान लेता है किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय के क्षेत्र में, वैसे ही जीवन संचालन का सफल कार्य एक संत ही कर सकता है। अपना जीवन संचालन सफल करता है और दूसरे आने वाले आश्रित को शरणागत का जीवन भी कैसे संचालन करना उसका मार्गदर्शन भी वो करता है। हम जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जीवन का संचालन करना हमें आता ही नहीं। उद्धव जी प्रभु से कुछ प्राप्त कर रहे हैं, जीवन का अंतिम अध्याय है, वृद्धावस्था आ चुकी है, अब अंतिम अध्याय की भी पूर्णाहुति आने वाली है। जीवन यात्रा की पूर्णाहुति के समय हमें क्या करना चाहिए? जीवन यात्रा की पूर्णाहुति कैसे होगी? हमारी दृष्टि, हमारा जीवन, हम किस प्रकार जी रहे हैं वैसी हमारी जीवन यात्रा चलने वाली। यहाँ पर जीवन का ठीक संचालन करने के लिए संत समागम सबसे श्रेष्ठ साधन है, यह भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया। आगे चलते हैं कि भगवान अपने हंसावतार की कथा के सुना रहे किसको? उद्धव जी को। और जो यह राजा निमी, उसको भी यह सत्संग सुनने का बड़ा आनंद आ रहा है। तो जो नव सिद्ध है, नव योगेश्वर है, ये कथा वहां पर भी सुनाए रहे। कथा सुनने का लक्ष्य यही है कि अपने जीवन को सुंदर बना। सत्संग से हमारे जीवन को अच्छी तरह से तैयार है। यहाँ पर इस प्रसंग में बता रहे हैं कि निवृत्ति परायण जो अवस्था के में बात निवृत्ति आती है, शरीर भी हमको निवृत्त कर देता है कि बैठ जाओ, आंख भी निवृत्त कर देगी, कान भी जैसे कल कहा था वैसे, जब जीवन ये शरीर भी निवृत्ति परायण हो जाए, जीवन भी अब किसी काम का न रहे, निवृत्त हो गए, किसी में वृत्ति न लगाना नहीं, इसका नाम है निवृत्ति। निर्गत है वृत्ति यस यसा निवृत्ति, वृत्ति को निकाल दिया, हटा दिया। सबसे पहले हमारी वृत्तियों को निवृत्त करना पड़ेगा, बाद में हम निवृत्त हो गए। व्यवसाय से निवृत्त होते हैं, नौकरी से निवृत्त होते हैं, लेकिन अपनी वृत्तियों से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। तूफान चलता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे तूफान भी बड़ा प्रबल होता है। छोटे थे तब ऐसा तूफान नहीं होता था, जैसे बड़े होते जाते हैं, अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे तूफान भी बड़े होते हैं, भयंकर होते हैं। सब अनुभव ले रहे हैं अपने जीवन का, रसा स्वाद तो ले रहे हैं, समस्याएं और जोर पकड़ती हैं, शरीर में वृत्तियां और भी अधिक भड़कती है। जैसे जैसे आयु लंबी वैसे वैसे हमारा जीवन भी ऐसा बन जाता है कि हम स्वयं उसको संभाल नहीं पाते। भगवान कहते हैं उस निवृत्ति परायण जीवन में क्या करना, तो बालक मत जीवन जीना, बताओ निस्सहाय तो हो गए हैं। बालक थे तब शरीर से निस्सहाय थे, उसको खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं थी, बड़ा नहीं।